ओम शांति। जब हम विश्व के इतिहास के बारे में या भारत के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो हमें कुछ ऐसी विशेष हस्तियों के बारे में जानने को मिलता है, उनके जीवन के बारे में समझने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए या मानवता के लिए एक अद्भुत अद्वितीय कार्य किए। जैसे हम भारत के इतिहास के बारे में देखें तो भारत देश के अंदर ऐसी महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने उस समय में समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की समस्याएं थी, कुरीतियां थी, उनको समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। एग्जाम्पल के रूप में राजा राम मोहन राय, उन्होंने उस समय जो देश में समाज में प्रथा चालू थी, सती प्रथा, जो कि एक मानवता विरोधी प्रथा है, उसको अंत करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। जब उन्होंने अपने बाल्यकाल में देखा कि उनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद, देह त्याग के बाद, उनकी भाभी को लोगों ने कितना प्रेशर डाल करके उनको सती होने के लिए प्रयास किया और उनको सती होना पड़ा, तो ऐसे समय पर उनके अंदर दिल में यह संकल्प आया कि यह जो प्रथा है मानवता विरोधी, इसको अंत करना ही है, और उन्होंने उसके लिए हर संभव प्रयास किया और उसमें सफल हुए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इस भगवान के रचे हुए महायज्ञ में, भगवान के इस महान कार्य को सफल बनाने के लिए ऐसी कुछ विशेष आत्माओं ने अपना तन मन धन से सहयोग दिया, त्याग और बलिदान किया। उनमें से एक विशेष आत्मा थी, विशेष हस्ती थी, हमारी दादी सिरिंद्रा जी। दादी सिरिंद्रा जी सिंध हैदराबाद की एक प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करती थी। उनके दादाजी, ग्रैंडफादर, सिंध हैदराबाद के एक जाने माने, एक सुप्रसिद्ध व्यापारी थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनको लोग सम्मान देते थे, हर प्रकार के समाज के कारोबार के लिए उनसे राय लेते थे। उनका नाम था दादा आसाराम जी। तो दादा आसाराम जी के तीन बेटे थे, उनमें से बड़े बेटे के चार बच्चे थे, दो बेटियां और दो बेटे। उन बेटियों में से पहली बड़ी बेटी थी दीदी मनमोहिनी, इनको हम सभी दीदी के रूप में जानते हैं, जिन्होंने बाबा के अध्यक्ष होने के बाद दादी प्रकाश मणि जी के साथ में रह करके इस यज्ञ को संभाला, आगे बढ़ाया। और दूसरी बेटी थी दादी शीलेंद्रा जी, और इनके लौकिक माता जी का नाम था रुक्मणी, जिनको बाबा ने बाद में नाम दिया क्वीन मदर। तो दादी शीलेंद्रा जी एक संपन्न परिवार से थे, एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। उनके दादा का बहुत बड़ा व्यापार था देश विदेश में। सिंध हैदराबाद में उनका अपना फार्म हाउस था, बहुत बड़े बड़े मकान थे। लेकिन ऐसी विशेष आत्मा जिसके जीवन में स्थूल सर्व प्रकार से संपन्नता थी, लेकिन जब भगवान का यज्ञ स्थापन हुआ, जिसको ओम मंडली नाम दिया गया शुरू में, जब ओम मंडली सत्संग शुरू हुआ और जब इस परिवार को मालूम पड़ा, तो जैसे अन्य परिवार इस ओम मंडली में समर्पित हुए, सत्संग में शामिल हुए, इसी प्रकार से दादा आसाराम जी का परिवार भी इस परिवार में, इस यज्ञ में, ओम मंडली में ध्यान सुनने के लिए आने लगे। उसमें दादा आसाराम जी, क्वीन मदर, दीदी मनमोहिनी, दादी शीलेंद्रा जी और उनकी कजिन दादी ब्रिज शांता और हरदेवी बहन, ये एक ही परिवार से इतने मेंबर्स उस समय यज्ञ में समर्पित हुए। तो जब ये यज्ञ में ओम मंडली में ज्ञान सुनने के लिए जाते थे, उस समय सभी को ज्ञान अच्छा लगता था, बाबा का प्यार मिलता था, सभी के जीवन में खुशियां थी और उन्हीं खुशियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो आगे बढ़ते बढ़ते जब समाज में कहीं से आवाज उठने लगी कि ओम मंडली में जो भी ज्ञान सुनने जाती हैं, विशेषकर माताएं या बहनें, तो उनके लिए बाबा जो शिक्षा देते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तो समाज में जो आवाज उठने लगी कि दादा जो सत्संग चलाते हैं उसमें यह जो शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना हर एक के लिए अनिवार्य है, जो कि हमारे समाज के लिए नुकसानकारक है, हानिकारक है, इससे परिवार समाज टूटेगा, संबंधों में टकराव पैदा होगा, तो समाज में इसकी आवाज उठने लगी और कुछ समय के बाद पूरे शहर के अंदर ये आवाज फैल गई। तो जो इस बात के विरोधी थे उन लोगों ने मिलकर के दादा आसाराम जी के पास जा करके उनसे मुलाकात की और उनको पूछा कि आप भी सत्संग में जाते हैं क्या, जो सत्संग हमारे परिवार को तोड़ने वाला है, समाज में समस्या पैदा करने वाला है, परिवार में संबंध बिगाड़ने वाला जो सत्संग है, आप भी वहां जाते हैं? तो उनके बहकावे में, उनके कहने से आसाराम दादाजी उन्होंने सत्संग जाना बंद किया। साथ साथ उन्होंने जो परिवार के मेंबर थे, दीदी, क्वीन मदर, दादी शीलेंद्रा, उनको जाने के लिए भी मना किया और कुछ समय के बाद तो इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि उन्होंने साफ मना किया कि वहां सत्संग में कोई भी नहीं जाएगा। तो जैसे अन्य जो दादियां थी उनके जीवन में जो अनेक प्रकार के बंधन आए, इसी प्रकार से दादी शीलेंद्रा जी के जीवन में भी अनेक प्रकार के बंधन आए। तो इन बंधनों को चलते हुए उन्होंने अपने जीवन को डिसाइड किया कि हमें इस मार्ग पर चलना है। और फिर बाद में क्वीन मदर, दीदी मनमोहिनी, दादी शीलेंद्रा और उनकी कजिन ये बाबा के पास आए और आकर के समर्पित हुए। तो ये उनकी संक्षेप में हिस्ट्री है सिंध हैदराबाद की। जब ये बाबा का यज्ञ मधुबन में यहाँ माउंट आबू में समर्पित हुआ, तो जो दादी थी, दादी सील, उनको दादी सील भी कहते हैं, तो दादी सील जो थी उनके जीवन की बहुत सारी विशेषताएं थी। पहली बात है कि बाबा की वो एक फेवरेट संदेशी थी। जैसे यज्ञ में और भी कई संदेशियां थी, जैसे दादी गुलजार जी, दादी संदेशी जी जो उड़ीसा के इंचार्ज थे, इसी प्रकार से दादी शीलेंद्रा जी भी एक बाबा की फेवरेट संदेशी थी, विशेष संदेशी थी। बाबा उनके माध्यम से कई संदेश मंगवाते थे। जैसे कि एक मिसाल है कि साकार बाबा ने एक बार उनके तन में श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा का आवाहन किया, क्योंकि बाबा को ये जानना था कि जो भविष्य में हम श्री नारायण बनने वाले हैं उनकी प्रैक्टिकल जीवन में क्या एक्टिविटी होती है, कैसे वो चलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनकी क्या पर्सनैलिटी होती है, उसको जानने के लिए बाबा ने उनके तन में श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा का आवाहन किया और उस समय वो आत्माएं उनके तन में आई थी। तो उनके सारे प्रैक्टिकल जीवन से वो देखा, जब लक्ष्मी की आत्मा आई और उनको चलने के लिए कहा तो उसने गलीचे से नीचे चलने के लिए साफ मना किया। क्योंकि उनके जीवन में इतनी रॉयल्टी थी, उनका चलना, उनका देखना, उनके चेहरे से वो झलकता था कि ये लक्ष्मी की आत्मा है, ये नारायण की आत्मा है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हिस्ट्री हॉल में हम सभी देखते हैं कि जो लक्ष्मी नारायण का फोटो है, बाबा ने वो फोटो इन दादी के माध्यम से ही बनवाया था। ये दादी जी विशेष संदेशी बनकर के भतन में जाकर के वो चित्र देख करके आती थी, और यहाँ जो पेंटर था चित्र बनाने वाला, उसके माध्यम से उसको डायरेक्शन देकर के वो चित्र बनवाती थी। इसी प्रकार से एक घटना है कि मधुबन में यज्ञ के अंदर पांडव भवन में किचन के अंदर कहीं एक केरोसिन लीकेज था जो किसी को मालूम नहीं था, तो बाबा ने उनके द्वारा वो संदेश भेजा, उनको वतन में इमर्ज किया, उनको कहा कि जाके पता करो, जो वहां संभालने वाले हैं उनको बताया जाए कि कहीं केरोसिन लीकेज है। तो दादी ने वो मैसेज आके दिया और उसको देखा, उसको ठीक किया। इसी प्रकार से और भी बातें हैं जो कि दादी संदेशी बनकर के वो संदेश लाती थी। इसमें विशेषकर रमेश भाई जी का कई ऐसे अनुभव हैं, जैसे कि 1968 में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में पहली बार वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बनाया गया, तो उसमें साकार बाबा ने शील दादी को उसके लिए ट्रस्टी के रूप में निमित किया, निश्चित किया, क्योंकि रमेश भाई जी यज्ञ की कारोबार तो देखते थे लेकिन उनको इसके बारे में इतना अनुभव नहीं था, और बाबा त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि बाबा को पता था कि भविष्य में इनके माध्यम से बहुत कुछ सहयोग मिलेगा, क्योंकि जब तक साकार बाबा थे तब तक तो उनको बाबा से मदद मिलती थी यज्ञ की हर कारोबार को संभालने के लिए, कारोबार को कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बाबा उसके लिए हर प्रकार से शिक्षा देते थे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद सील दादी का उनको बहुत जरूरत पड़ी, इसलिए साकार बाबा ने उनको पहले से ही निमित्त बनाया था उस ट्रस्ट को ट्रस्टी के रूप में संभालने के लिए। इसी प्रकार से दूसरा एक दृष्टांत है, एक प्रसंग है कि जब 1971 में विदेश सेवा पर एक डेलीगेट गया था जिसमें 6 मेंबर थे, आदरणीय जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी, और बहनों में डॉक्टर निर्मला दीदी जी, रोजी बहन, उषा दीदी, और साथ साथ सील दादी। तो सील दादी इस ग्रुप की लीडर थी, इस ग्रुप को चलाने वाले संचालिका के रूप में गई थी। जब ये अमेरिका न्यूयॉर्क में सेवा पर थे उस समय विशेषकर एक संस्था के अंदर इन्होंने एग्जीबिशन लगाई थी और उसके लिए उनको सेवा के लिए जाना था। जब ये अपने कमरे से निकले और लिफ्ट में बैठ करके जाने वाले थे उस समय बाबा ने इनको सील दादी को विशेष टच किया और सील दादी को ऐसी प्रेरणा आई कि बाबा कुछ कहने वाले हैं, तो सील दादी ने सभी को कहा कि अभी हमको वापस अपने कमरे में जाना है। सब वापस कमरे में आए और सभी योग में बैठ गए। उस समय बाबा ने सील दादी को वतन में इमर्ज किया, उनकी रस्सी खींच ली और बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा ने आप लोगों को खास योग के लिए बुला ही लिया। और बाबा ने हंसते हंसते कहा कि बच्चे, अभी आप विदेश सेवा पर हो, ये आपका इंडिया नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसा होता है कि जब भी हम कहीं सेवा में जाते हैं, यदि हम कोई चीज कोई वस्तु भूल जाते हैं तो हम किसी को बोल करके वो उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि ये विदेश है, यहाँ आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनना पड़ता है। तो सबने सोचा कि जो भी हमने सामान रखा सेवा के लिए वो शायद सभी सामान लिया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने चेक किया तो उसमें मालूम पड़ा कि मैच बॉक्स, माचिस नहीं थी। तो सभी ने इस गलती को रियलाइज किया, महसूस किया, और साथ साथ उन्होंने ये बात भी रियलाइज की कि जो बाबा ने यहाँ से जाते समय जो शिक्षा देते श्रीमत देते कि बच्चे कोई भी कार्य करने जाओ तो उस समय पहले बाबा को 5 मिनट याद करके फिर जाने का है। तो उस समय उन्होंने ये भी गलती की थी, भूल की थी, बाबा को याद किए बगैर सेवा पर जा रहे थे, शायद सेवा का उमंग उत्साह बहुत होगा। तो उन्होंने इस बात को भी रियलाइज किया कि कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उस समय बाबा को याद करके ही जाना है। और ये सिस्टम अभी तक भी चालू है, जब भी कोई कार्य करते हैं तो बाबा की याद से वो कार्य शुरू करते हैं और वो कार्य संपन्न होने के बाद फिर बाबा को याद करते हैं, थैंक्स देते हैं। तो इस प्रकार से वहां बाबा ने इस प्रकार से उनको मदद की। इसी प्रकार से दूसरा एक प्रसंग है कि 1963 में भारत सरकार ने एक नियम बनाने का प्रस्ताव रखा 1973 में, तो उसमें संसद में उसके ऊपर बहस भी चली और उनका ये था कि भारत में जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में जो दान पेटी होती है जिसमें दान दाता करके अपना दान देते हैं, दान डालते हैं, तो उनका ये था कि उसको बदल करके उसमें एक ऐसा नियम बनाया जाए कि जो भी दान करने वाले हैं, दान दाता हैं, उनका हरेक का नाम, उनका परिचय, उनका अमाउंट वो सब होना चाहिए जिससे मालूम पड़े। तो उसके लिए उन्होंने संसद में इसके ऊपर बहस भी चली, उन्होंने एक कमेटी बनाई कि वो कमेटी जो भी पास करेगा उसके अनुसार फिर बाद में वो नियम लागू करेंगे, नियम बनाएंगे। तो वह बात यज्ञ में भी, यहां भी मीटिंग हुई, सभी बड़ों ने मीटिंग की कि जब सरकार ऐसा नियम बना रही है तो हमें भी उसके लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी वो सिस्टम चालू है कि जो भी बाबा के बच्चे हैं वो भंडारी में ही सब कुछ डालते हैं। तो जब इसके लिए मीटिंग चल रही थी तो यहां दो पक्ष थे, एक का मानना था कि बाबा ने जो सिस्टम शुरू किया भंडारी में डालने का, गुप्त दान महापुण्य का, वो सिस्टम चलते रहना चाहिए, और दूसरा पक्ष था कि सरकार जब ऐसा नियम बना रही है तो हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए काफी डिस्कस हुआ। तो उस समय सभी की राय से सील दादी को कहा कि आप बाबा के पास जाएं और इसके लिए बाबा का संदेश लेके आएं, क्योंकि उस समय दादी गुलजार जी मधुबन में उपस्थित नहीं थी। तो सील दादी जब बाबा के पास बतर में गए तो बाबा ने मैसेज न दे करके स्वयं बाबा उनके तन में अवतरित हुए। जब दीदी ने बाबा को उनके तन में देखा तो दीदी ने कहा कि बाबा आप अचानक ऐसे कैसे आ गए, कैसे पहुंच गए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे यज्ञ की जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है भंडारे की, उसके लिए बाबा को श्रीमत देने के लिए आना पड़ा। तो बाबा ने कहा कि बाप की श्रीमत है कि यज्ञ में जो सिस्टम अभी तक चालू है वह सिस्टम चालू रखनी है, वही सिस्टम आगे भी रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सील दादी के द्वारा बाबा ने कई संदेश भी दिए, साथ साथ समय आने पर बाबा उनके तन में पधारते भी थे। तो ये एक ऐसी विशेष आत्मा है जिनके तन में बाप दादा अवतरित होते थे। इसी प्रकार से एक प्रसंग है कि लंदन में जो ऑक्सफोर्ड मकान है, सेंटर है, रिट्रीट सेंटर है, उसके लिए वहां बात चल रही थी कि उसको खरीदा जाए या ना या नहीं। तो वहां पर भी उन्होंने राय की कि बाबा से संदेश मंगाया जाए कि वो खरीदना है नहीं खरीदना है। तो बाबा ने उसके लिए भी दादी के द्वारा मैसेज भेजा कि उसको खरीदना है, जिससे वर्तमान समय बहुत सेवाएं हो रही हैं। इसी प्रकार से एक प्रसंग है कि जब हमारी आदरणीय मम्मा बेंगलोर सेवा में थी और वहां उनको जब फिजिकली तकलीफ हुई, प्रॉब्लम हुई, तो बाबा से राय लेकर के जब वो बॉम्बे गई चेक कराने के लिए, दिखाने के लिए, और जब उनको वहां पर चेकअप के लिए लेके गए और डॉक्टर ने जब चेक किया तो पाया कि उनके कैंसर है और कैंसर भी बहुत तेजी से शरीर में फैल रहा है। तो उस समय भी रमेश भाई को जब मालूम पड़ा कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, एक विकट परिस्थिति है, तो उन्होंने दादी जी को कहा कि आप बाबा के पास जाइए और हमारा ये मैसेज बाबा के पास लेके जाइए कि बाबा आपके तन में पधारें और हमें इसके बारे में गाइड करें, गाइडेंस दें। हालांकि उसमें दादी जी ने उनको साफ मना किया कि आप बाबा से पहले राय कीजिएगा, अगर साकार बाबा कहेंगे तो हम वतन में जाएंगे और बाबा को तन में आने के लिए कहेंगे। लेकिन रमेश भाई ने जब बहुत कुछ कहा कि उनको नहीं, हमको बात करनी ही है, बहुत आवश्यक बात है, जरूरी बात है, तो तब दादी वतन में गई और उसमें बाप दादा उनके तन में पधारे। दो ढाई घंटे की बात करने के बाद बाबा ने जो उनको गाइडेंस दी, जो भी सलाह दी, उन्होंने उसको उस रूप में फिर बाद में अप्लाई किया। तो हम देखते हैं कि दादी सिरिंद्र जी एक यज्ञ की ऐसी विशेष आत्मा थी जिनके माध्यम से इस यज्ञ के कारोबार में, इस ब्राह्मण परिवार में जो बहुत सारी बातें हुई उनको प्रैक्टिकल में लाने में इनका विशेष योगदान रहा। दादी सील की और भी कई विशेषताएं थी, जैसे कि बाबा उनको बॉम्बे का गवर्नर कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उनके जीवन में उनके अंदर इतनी रॉयल्टी थी, वो जो भी कार्य करती थी बहुत ही भपके से करती थी, यदि किसी से कोई कार्य कराना होता था तो बहुत अथॉरिटी से कहती थी, तो उनके अंदर वो पावर थी, इसलिए बाबा उनको बॉम्बे का गवर्नर कहते थे। उन दादी की और भी कई विशेषताएं थी, जैसे कि वो हर कार्य के लिए बहुत एक्यूरेट रहती थी। यदि उनको कहीं कभी किसी सेवा जाना होता था तो समय से पहले रेडी रहती थी। हाँ, बाबा ने कहा कि जो सील दादी हैं उनकी बुद्धि की लाइन हमेशा बहुत ही क्लीन और क्लियर रहती है, इसलिए बाबा ने उनको एक विशेष संदेशी के रूप में निमित्त रखा है। बाबा की एक फेवरेट संदेशी है। दादी सिरिंद्र जी उन्होंने बॉम्बे गामदेवी में रहकर के, गामदेवी कोलाबा में रहकर के अपनी सेवाएं दी और उन्होंने अपनी सेवाएं करते हुए 1996 22 जून को इस साकार देह का त्याग किया। तो ऐसी हमारी विशेष विशेष दादी आदरणीय सिलिंद्र जी थी जिनके जीवन में बहुत सारी विशेषताएं थी। उनकी विशेषताओं को हम सभी ध्यान में रखते हुए उनको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए अवश्य ही पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।